जैसे उस प्रकाश से इस सरोवर का, पंख भरे सरोवर का कमल खिलता है, उसी प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य प्रभृति अनेक विकृतियों के अमित पंख से परिपूरित जीवांतकरण के भीतर भी विवेक का वह मृणाल प्रकट होता है जिसके ऊपर कृष्ण प्रेम का पुंडरी खिल जाता है। और जब विरहासित विरह उत्सव है ना, जब प्रेमी जनों के विरह का निश्वास, तप्त निश्वास उस अंतर मकरंद का उड्डयन करता है, उसकी पराग की कणिकाएँ जब कमल के किसले पटल पर आकर के विकीर्ण हो जाती हैं, तब करोड़ों संत अपनी अपनी समाधियाँ, अपने अपने आग्रह, अपनी अपनी परंपराएं सब परित्याग करके अपनी रितंभरा मति के द्वारा उस राधा माधव के मंगल मधुर प्रेम के दिव्या सब का सेवन करते हैं, जिससे यह जीवन और यह जगत जो पंख का एक सरोवर है, वो चंदन के सरोवर की तरह से सुरभित होता है और अनंत जिनके पीत स्मशु हो गए हैं पराग के सेवन से, उन मधुकों से आवृत होकर के एक अनिर्वचनीय ब्रह्मानंद को भी विरंजित करने वाले दिव्यानंद के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। श्रीमद् रूप गोस्वामी के विषय में इन कतिपय क्षणों में क्या निवेदन करें। स्वयं जिनसे जब विरुद्ध जब विरुद्ध माधव की रचना की तो स्वयं श्री सत्यभामा जी प्रकट हो गए। भगवान दो नायिकाओं के दो भेद हैं, वामा और दक्षिणा। जैसे श्री वृंदावन में श्री राधा रानी और श्री चंद्रावली जी, एक वामा हैं एक दक्षिणा है। काव्य प्रकाश से, साहित्य दर्पण से, चंद्रालोक से और अन्य रसगंगाधर जैसे उत्कृष्ट संस्कृति के लाक्षणिक ग्रंथ के आश्रय में विवेचना करेंगे तो वहाँ स्वकीया परकीया का तात्पर्य पृथक है। लेकिन यहाँ जब श्रीमद् रूप गोस्वामी बात के उज्ज्वल नीलमणि अर्ग्ध माधव के आलोडन से उसकी व्याख्या करेंगे तो दक्षिण भाव का मतलब है कि मैं कृष्ण का हूँ, सब चंद्रावली जी की यही उपासना है, मैं कृष्ण की हूँ, मुझ पर कृष्ण का पूर्ण अधिकार है। जिस तरह से भी वो रखेंगे, बिना किसी प्रकार के संकोच के, व्यापत्ति के, मुझे उसी प्रकार से श्री कृष्ण की परितुष्टि के लिए उसी प्रकार के आचरण से माधवानंद का आस्वादन करना पड़ेगा। लेकिन श्री राधा रानी दक्षिणा है, बाला नायिका है, वो क्या कहते हैं कि हम जैसे चाहेंगी वैसे कृष्ण को करना पड़ेगा। हम कृष्णानुवर्ती नहीं हैं, कृष्ण हमारे अनुवर्ती हैं। हमारी रुचि, हमारे स्वाद, हमारी भंगी, हमारे रस वैचित्र भाव वैलक्षण्य गत अनुभूति के अनुसार ही श्री कृष्ण को अपनी लीलाओं का प्रकाश करना पड़ेगा। इसलिए श्री राधा रानी के तो वामा नायिका होने के नाते श्री कृष्ण सेवा करते हैं, चरणावलोकन करते हैं, उनकी भंगी का के अनुसार लीला का आयोजन करने का योग माया को आदेश करते हैं। योग माया अनुपाश्रितः ये श्रीमद्भागवत में एक निर्देश वाक्य है कि जब किसी प्रकार की लीला को प्रकट करना अभीष्ट होता है तो उसके मंच की और लीला पात्रों के श्रृंगार की और उनके एकत्र करके उनकी विभिन्न भावभंगियों का और उनकी गीतियों का संचालन करने का कार्य नटी के रूप में ये स्वयं योग माया करती है। इसलिए रासलीला का ये वाक्य संपूर्ण श्रीमद्भागवत के जैसे अंतरा और स्थाई संगीत की दो बात होती हैं, योग माया उपाश्रितः, योग माया को आश्रित करके और उनको श्री किशोरी जी के भंगी के अनुसार आदेश दे करके लीला मंच का संयोजन और लीला मंच पर प्रकाश होने वाले परतत्व पराविद्या के सार सर्वस्व रस संभूत भंगियों का उद्भाव वो श्री कृष्ण करते हैं। वही मयूर पुच्छ की तरह से आपीड के रूप में और मस्तक पर सुशोभित है। उस आपीड में क्या है, थोड़ी देर के लिए तो भगवान की संयोग की लीला होती है। बाहु प्रसार परिरंभ कराद कोरु नीविष्टना लभन नर्मन खग्रपाद खिल्या विलोक हसित व्रजसुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। अर्थ करने की अपेक्षा नहीं है, रसशास्त्र का संपूर्ण बीज इस श्लोक के भीतर विद्यमान है। परंतु जब उसमें विरह का विप्रलम्भ, ये विप्रलम्भ और संयोग परिस्थिति नहीं है, ये दो भाव की आस्वादना है। भाव कोई पैशन नहीं है, कोई सेंटीमेंट नहीं है, भाव किसी प्रकार का इमोशन नहीं है, ये किसी से अचीव नहीं हुआ है, यह बुद्धि के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। भाव वह है जो जैसे सुंदर बीज पड़ने पर और वर्षा ऋतु होने पर अंकुरित होकर के वो एक वृक्ष के रूप में परिणित होता है, ऐसे ही गुरु और संत की कृपा से बीज रूप में अंतकरण की उर्वरा भूमि में उत्पन्न होकर के श्री किशोरी जी के दुलार से संपोषित होकर के जो अपने अंतकरण में विकसित होकर के और नेत्रों से मकरंद के रूप में निर्झरित होकर के संत और रसिकों के हृदय की भूमि को आप्लावित कर देता है और उसके उद्गार रूप में जब नेत्रों से अश्रु मुख पर मंगल दिव्य भावों की अभिव्यंजना दंत पंक्तियों से सर्वांश विभाजित एक दिव्य उद्भवन होता है तो रात्रि में जब खिलता है तो वह कुमुद कैरव हो जाता है और दिन में जब विकसित होकर के मधु श्रेणी को अपना मकरंद मिश्रण करता है तब वह पुंडरीक होकर के संसार में अभिहित होता है। लेकिन ये सब उस लीला को अभिव्यंजित करने के लिए, भाव को अभिव्यक्त करने के लिए कहीं गान की आवश्यकता है। भगवान गीत कीर्ति ही वेणु गीत में, क्योंकि समय की सीमा को ध्यान में रखना पड़ेगा, भाव गीति करुणा नेत्रों से अश्रुप्रपात निर्झरण रोमांच मधुर हास्य आर्तर्गन गमनागमन अवस्थान अवलोकन विलोकन हसन दशनो नयनो डयनादि सर्वादि क्रियाकलापांशु अभिव्यक्त अभिव्यंजना रूपेण विद्यमान कृष्ण भावभंगी समुष्णतः रसधारा एव तत्र। उस रूप में जब होती है तब सब मिलाकर क्या होता है, ली धातु आवर्तने निवर्तने संस्कृत में है, लीला संपूर्ण विकार जो है वो नसों से निचुड़ निचुड़ करके निकल जाते हैं और संपूर्ण जो सद्गुण सद्भाव सद्भंगी और सत्य सत्तत्व उद्वैनित होकर के प्रत्येक भंगी से गमनागमन क्रिया से कलाप से आलाप से विलाप के रूप में या षड्जल्प प्रलाप जैसा भ्रमर गीत में है उसके अनुसार उद्विनीत होकर के रसियों की प्राण भूमि को भावकल्प कर्तनों से समाच्छादित कर देता है। इसलिए कृष्ण लीला अति गंभीर और भाव जो है उसमें प्रधान है। अब रूप गोस्वामी पाद का तिरुभाव एक भाव ही है, महात्माओं का ऐसे सिद्ध संसिद्ध श्रेष्ठ महात्मा तो श्री गोविंद के प्रेम समुद्र से ही उद्भूत होते हैं, उनका उद्भाव होता है, आविर्भाव होता है, तिरुभाव होता है और उपासकों के मध्य में उनकी हृदय संकोटी से भाव के रूप में प्रकट होता है और अविनाभाव अंतर में सुषुप्त जो रस है उसको जागृत करके अप्लाइट करके उन्हें कृष्ण प्रपन्न होने के प्रति प्रेरित ही नहीं करता है अपितु अपने तीव्र प्रवाह से विषयों में गढ़े हुए को जबरदस्ती तरंगों से उल्लसित करके और भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। ऐसी गति जिसके द्वारा उद्भावित होती है भव प्रकाश आसमंतात् भव संपूर्ण भरणम पोषणम आभरणम आभान्वितम यज्ञात सर्वं खलमिदम एव तत्र विद्यमानः तद् भावेन भावितः। भक्त जो है भगवान की रसमाधुरी का सेवन करता है और इसका संपूर्ण प्रतिपादन पहले विदग्ध माधव दलित विदग्ध माधव ही लिखा था लेकिन सत्यभामा जी ने प्रकट होकर के ऐश्वर्य में इसका क्या उद्भाव होगा इस प्रेरणा से ललित माधव की रचना कराई। रुक्मणी जी इसमें प्रधान नायिका हैं, विदग्ध माधव की प्रधान नायिका श्री राधा रानी हैं। जब श्री कृष्ण द्वारका गए तो प्रत्येक गोपी ने अपने अपने भीतर की एक किरण कणिका उन महर्षियों में स्थापित कर दी जिससे कृष्ण को कोई पीड़ा नहीं हो, कृष्ण की भंगी को समझने में असुविधा न हो, कृष्ण से सेवा में आलस्य नहीं हो और कृष्ण भाव को जगत में अभिव्यक्त करने में उनकी प्रतिभा कम न पड़ जाए। सबके भीतर रुक्मणी जी में साक्षात चंद्रा लक्ष्मी जी हैं, चंद्रावली जी का रूप है, ऐसे लक्ष्मी जी का स्वरूप है। स्वामी पाद लक्ष्मी कोटि से प्रधान सरस्वती पाद का श्लोक है, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसन लीला किशोरी शतैराराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम ज्योति किंचन सिंच दुज्वल रस प्राग्भाव राधे चेतसी भूरि भाग्य विहुवई कश्याप्य होजम भजे। एक एक लोम में करोड़ करोड़ लक्ष्मियाँ जैसे कमल के चारों तरफ मधुकर श्रेणी मंडित है, श्री किशोरी जी के हास्य कमल, उनके निश्वास के सौरभ, उनके कटाक्ष के ज्योतिराग, उनके कंठ के कलश स्वन, उनके गमन में झूमते हुए गजेंद्रों की मदस्नो की धारा, उनके अंतर प्राणों में खिले हुए कृष्ण विषय भावों के पुण्यरीक का मंगल मकरंग, उस सौरभ्य का उस सौंदर्य का लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतम कांति कापि महाद्भुता वरतरुणीला गतिश्चाद्भुता दृढ़भंगी पुनराद्भुताद्भुतम यस्यास्मितम चाद्भुतम सा राधाद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यति। संपूर्ण ही है लेकिन ये सब कहाँ था, श्रुतियों के अनंत अथाह महासिंधु में से बड़े परिश्रम के साथ खोज करके भी नहीं निकाल पाते थे। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। सबसे बड़े विद्वान हुए इस युग के पवित्रा जगन्नाथ, जिनका ग्रंथ रसगंगाधर आचार्य के चौथे खंड में केवल उसके चार अध्याय पढ़ाए जाते हैं, इतना क्लिष्ट है कि आचार्य के विद्यार्थियों के लिए भी ग्राह्य नहीं है। उन्होंने यावनी से विवाह किया, सामाजिकों ने विद्वानों, अरे भाई क्या, सामाजिकों ने दंड दिया इनको, इनको राम गला करके पी करके प्राण घात करना चाहिए, इन्होंने अपराध किया। जब गंगा में कूदने लगे तो गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी ने कहा कि तुम इतना मूल्यवान प्राण क्यों नष्ट करते हो, जगन्नाथ जी चले जाओ। इस समय राधा गोविंद की सम्मिलित मूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के आपको गरुड़ स्तंभ के सहारे अस्थि विमोचन करते हुए दर्शन होंगे। पंडिता जगन्नाथ गए वहाँ, देखा वो जो दीपक के दोनों कटोरे थे महाप्रभु के आंसुओं से भर जाते थे। एक बार महाप्रभु को देखते थे, एक बार जगन्नाथ जी के विग्रह को देखते थे। जगन्नाथ जी के विग्रह में ऊपरी तौर पर तो सौंदर्य नहीं है, लावण्य नहीं है, माधुर्य नहीं है, दूसरी प्रकार का श्री मुख की मुद्रा है, लेकिन ऊपर के आवृत मुख में महाप्रभु के कृपा प्रसाद से राधा भाव भावित होकर के जब पंडितराज जगन्नाथ के हृदय में स्फूर्ति के बिना पूर्ण नहीं होती। जब वो अग्नि प्रस्फुटित होता है तब कहीं वो अंतर संपुटी खिलती है और उसमें से जैसे मुँह में से थूक निकलता है, नाक में से पानी निकलता है, ऐसे लोगों की अंतर संपुटी का जब विमोचन होता है तो उनके भीतर से राधा कृष्ण के रस की मंगल धारा का निर्झरण होता है, चेतना का उद्भावन होता है। पंडित राज गदगद हो गए। एक और महाप्रभु को देखते थे, विग्रह वहाँ है, सौंदर्य यहाँ है, लावण्य लवणता उसमें है लेकिन मूर्तिमंत लावण्य की झलक चिलक यहाँ है। और महाप्रभु ने कहा, अब तो लंबी बात हो गई, तुम जय विष खा करके गंगा में डूब करके इस कीमती जीवन को क्यों नष्ट करते हो। ये शरीर इसलिए दिया गया है कि स्त्री आदिकों के रूप को देखने के बाद प्रेरित होकर के फिर संत चरणों की धूलि से बुद्धि का मार्जन करके तुम उस दिव्य राधा राधक माधुरी के रस के समास्वादन की सत्पात्रता और सौभाग्य राशि प्राप्त करो। और फिर श्री कृष्ण श्री राधे कहते कहते यदि इन प्राणों का परित्याग करोगे तो तुम निश्चित रूप में न यमदूत लेने आएंगे, न विष्णुदूत लेने आएंगे, न नारायण लेने आएंगे। बालक को उठाने को माँ दौड़ती है, तुम्हें उठाने को श्री राधा रानी स्वयं करती है। धन्यता संपन्न हो जाए। पंडित राज ने जब अपने रसगंगाधर की रचना की उसी श्लोक के लिए, उन्होंने कहा कि इस भाव की व्यंजना कैसे, अब हम क्या सुनाएं। रसगंगाधर के यद्वी का रसिता सिता समशिता स्फीतम निपीतम पयस्वरया तेन सुधाप्यधायी कटिधारंभाधर खंडित तत्व ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता कृष्णेत्यक्षरयोरियम मधुरमोद्गार वटिलक्षितः। कृष्ण रसभूमि से अधिक कुछ है तो महाप्रभु की कृपा से ये श्लोक रसगंगाधर का है, जो संस्कृत का सबसे प्रौढ़ और सबसे गंभीर महाकाव्य है। रोज हम कहते हैं, मैं अपने विषय को लान करके आ गया हूँ क्योंकि घड़ी सामने है, बहुत बड़े बड़े वक्ता बैठे हैं। द्विका सिता सिता जीव, रोज हम कहते हैं मन एवं सांख्य के आधार से मन सांख्य में मन को मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय हो, ये मन ही संपूर्ण बंधन और मोक्ष का कारण है। वैशेषिक ने अपनी तरह कहा, न्याय में अपनी तरह प्रतिपादन हुआ, सांख्य ने अपनी तरह से कहा, योगियों ने अपनी तरह से स्वीकार किया, लेकिन आज महाप्रभु ने कहा कि एक बार तुम ऐतिहासिक इसमें कुछ आपत्ति करते हैं, ऐतिहासिक समय में कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ता है उससे वो इसमें कुछ आपत्ति करते हैं, लेकिन बहुत से साहित्यकारों ने, आचार्यों ने और स्वयं एक जगह श्री गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शांतिनिकेतन ने, इन दोनों के सम्मिलन के सत्य को स्वीकार किया है। तो रूप गोस्वामी से कहा तुम इनको श्लोक सुनाओ। देखो ये रूप भी कवि हैं, पंडित राज तुम भी संसार समय के सबसे बड़े श्रेष्ठतम कवि हो, तो सुनाया। तो स्मरणालंकार जब का वर्णन जब करने लगे तो उन्होंने एक श्लोक कहा, यद्वी का रसिता सिता समशिता स्फीतम निपीतम पय स्वरया तेन सुधाप्यधायी कतिधारंभाधर खंडिता तत्व ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्रम्यता कृष्णेत्यक्षरयोर्यम मधुर्मोद्गार पटिलखिता। रोज जीव मन पर दोषारोपण करता था, आज मन कह रहा है कि जीव ठहरो, तुम्हारे आरोपित दोषों को सुनते सुनते मैं थक गया हूँ, तुमने मेरी आश्रय को समझा नहीं, मैंने वो किया जो तुमने कहा, मैं वहाँ गया जहाँ तुमने चलाया, मैंने वो कहा जो तुमने कहलवाया, मैंने वो देखा जो तुमने दिखाया, मेरे इस समर्पण को तुमने दोष कह करके, दुर्बलता कह करके, अनेक शास्त्रों में, अनेक विज्ञों के मध्य में, अनेक तत्वज्ञानी और तत्ववादियों के मध्य में इसको किस प्रकार से तुमने मुझे अपयश प्रदान किया, तो मेरी बात सुनो। तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, नत्वेवाहम गीता में भगवान ने कहा है, नत्वेवाहम जातु नासम नत्वं निवेदनाधिपः। अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं रहा जब मैं और तुम साथ नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं रहेगा जब मैं और तुम साथ नहीं रहेंगे, लेकिन और समय मैं विवश होकर के मैं वह करता रहा हूँ जो तुमने मनस्कल्प किया है, मन में संकल्प किया है, लेकिन तुम्हारे प्रत्येक संकल्प के बीच में विकल्प आ जाने के कारण तुम मुझे नहीं देख पाते थे। आज विकल्प, व्यतिरेक, व्याघात और विमर्श मन की प्रकृति के इन चार दोषों से मुक्त होकर के, इन आवरों को, यवनिकाओं को निवृत्त करके मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम अपने पुराने सारे जन्मों का स्मरण करो, किस जन्म में तुमने किन किन प्रकार के दिव्य रसों का, फलों के रसों का, कामनी कंचनादि के रसों का, अन्य आसवों का, अनेक प्रकार के मकरंदों का और अनेक प्रकार के बने हुए चर्प्य चोष्य लेह्य भक्ष्य भोज्य अम्ल तिक्त कटु कषाय मधुरः, इन सब पदार्थों के रसों के सेवन करने में अपने कितने कितने जीवन व्यतीत कर दिए हैं। आप विवश होकर के मुझको तुम्हारे इस अंतिम जन्म में, अंतिम समय तुमसे कहना पड़ रहा है, सबरे रसों को पिया है, लेकिन अब मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, जो दस श्लोक की पढ़ी उसी के श्लोक की व्याख्या में आचार्यों ने लिखा है। हम भागवत का जो कुछ कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की आधार से कहते हैं, और आप लोगों को सुनकर के एक प्रसन्नता होगी, प्रसन्न प्रसाद रुक कर कहता हूँ, ये जिसके पवित्र हैं उनके पिता बाबा सार्वभौम श्रीमद सुजन गोस्वामी पाद और उनके पिता श्री राधारमण गोस्वामी पाद सबसे पहले गौड़ीय संप्रदाय के महाभाष्य की रचना उन्होंने की, जो पांडुलिपि के रूप में अभी भी इनकी अलमारी में कहीं रखी होगी। सबसे पहले गौड़ीय महाभाष्य की रचना उनके द्वारा हुई, मैंने दर्शन किया है। अब इनके बाबा तो मेरे गुरु ही थे, लेकिन उनके श्री मत्स्यजन गोस्वामी पाद सार्वभौम मत्स्यजन गोस्वामी पाद का वो उस भाष्य से श्रीमद्भागवत का प्रवचन करते थे। और मेरा ख्याल है, विश्वास है, वो पांडुलिपि अवश्य इनके यहाँ होगी और उसे प्रकाशित करके वो साहित्य जगत को एक अमूल्य नया रत्न प्रदान करें। तो वहाँ मन कहता है जीव से कि तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने किया है, आज मैं कहता हूँ तो मेरे कहने के अनुसार कुछ करो। महाप्रभु उन्हीं से तो कहते हैं, रूप महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी तीन चैतन्य चैतामृत में जगत गुरु शब्द का प्रयोग यदि किसी के लिए हुआ है तो सनातन गोस्वामी के लिए हुआ है। श्रीमद् महाप्रभु के मुख से श्रीमद् रूप गोस्वामी को माथे पर हाथ रख करके हरिदास जी की कुटी में सार्वभौम भट्टाचार्य, श्री गोपीनाथाचार्य, अद्वैताचार्य और संपूर्ण कविकर्णपुर प्रभृति समस्त आचार्यों के मध्य में हाँ रूप नाम की महिमा तो कहो। और सार क्या कहें सुनाए तो बहुत, तुंडे तांडवनी रतिम विदन्ते तुंडावली लंधये कर्ण क्रोध कडम्बनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहं चेत प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता यद्भिर्मृते हि कृष्णेति वर्णद्वयी। जब ये श्लोक सुनाया सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा आज के पूर्व नाम की महिमा किसी ने इससे लड़ी है, तो वृद्ध माधव का श्लोक। तो इसलिए ये दिव्य जो मन ने कहा, एक मिनट में बात समाप्त करके, तुम जी एक बार जो तुमने कहा सो मैंने किया, आज एक बार मैं जो कहता हूँ वो तुम कर लो। तो कभी कभी जीव में रजोगुण रहता है, कभी कभी तमोगुण रहता है, कभी कभी सतोगुण का उदय होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे संत मिल जाएं, महापुरुष मिल जाएं, तो रज तम सत्व तीनों गुण नीचे दब जाते हैं। विशुद्ध सत्व जो है वो समुदित होकर के उस निवृत्त के शुद्ध पर तत्व का अनुभव प्राप्त करा देता है, जिस अनुभव को बड़ी बड़ी निर्विकल्प और अभिज्ञात समाधियों में भी प्राप्त करना किसी की क्षमता नहीं है। बोले कहा मन से कहो क्या कहो, क्या कहना चाहते हो? बोले मैं कहना चाहता हूँ तुमने कामधेनु का दूध पिया है, तुमने कल्प वृक्ष के फूलों की सुगंध दी है, तुमने अनेक प्रकार के अप्सराओं के नृत्यगान कटाक्षादियों के विषयों के आस्वादित रस का भी स्वादन किया है, तुमने अनंत अनंत जन्मों में अनंत अनंत पदार्थ और रसों का समय समय पर, क्योंकि सबके भीतर रस यमत्सु कौन्तेय शब्दम खे पौरुषम नशु प्रणव सर्ववेदेशु शब्दम खे पौरुषम नशु। आकाश में शब्द रूप से व्याप्त है, सांस के द्वारा वो शब्द जब खींचता है भीतर तब, और फिर जब उस शब्द के द्वारा उसमें जब विस्फोट होता है तो रस की धारा, रस सब रूप सबके भीतर विद्यमान है, कोई प्राणी नहीं है इसमें रस नहीं है, लेकिन उस रस को जागृत करने के लिए, रस को अनुप्राणित करने के लिए रसो वही सह जो कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, उस रस को जागृत करने के लिए हम किसकी शरण में जाएं? कृष्ण की शरणागति में नहीं हो सकता। ये प्रणय की भाषा है, इसको तत्वात्मक दृष्टि से मत देखिएगा। चल तो चल चारुण मुष्टिक, क्या मल्लयुद्ध हो रहा है, एक मुष्टिक एक को देखो तो आदमी विभल हो जाता है, नाक से नाक, कान से कान, होठ से होठ, माथे से माथा, दंत से दंत, वक्ष से वक्ष, बाहु से बाहु, जानू से गाहु, चरणों से चरण आपस में घर्षित हो रहे हैं और अखिल दशामृत सिंधु सार विग्रह गोविंद उठक पटक करने के बाद भी इन दोनों दुष्टों के भीतर चाणूर मुष्टिक के भीतर एक बूंद रस का संचार करने में कर्तुम अकर्तुम सर्वता कर्तुम ईश्वर साक्षात कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह होने पर भी एक बूंद रस का संचार नहीं कर सके। क्यों? तुलसी किशोरी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त नहीं। इन्होंने कभी किसी रसिक संत का सत्संग नहीं किया। जबकि भागवत कहती है सत्संग सेव अधीर्णीनाम, सत्संग ही मंगलों की परिष्कारा काष्ठा है। जबकि भगवान स्वयं अपने श्री मुख से उद्धव से कहते हैं नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम च दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्नांसी तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुंधि सत्संगः सर्वसंगा बहु इमाम। सत्संग ही सबका मूल है और वो सत्संग क्या क्या, जब वो प्रति में सत का समुदय होता है, जब भगवान सत चित आनंद, चित में भी आनंद में भी सद की सुंदर आविर्भूति संभावित होती है, उस समय अंतकल्प संकोटी विदीर्ण होकर के इस अलौकिक आनंद के रसोल्लास को अभिव्यक्त करने की स्थिति प्राप्त कर लेता है। तब स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्मा के दिव्य रस को जो कि वैकुंठ में लक्ष्मी के द्वारा चरण चापन के सेवन से भी सुलभ होने वाला नहीं है, उसे अपने ही कुठी में बैठे हुए आस्वादन करने की सत्पात्रता इस वृंदावन में आने पर, यमुना का आचमन करने पर, गिरिराज का दर्शन करने पर, महात्माओं के चरणों की रस सेवन करने पर तुम्हें प्राप्त करना सुलभ हो जाता है, सहज हो जाता है। तो मन ने कहा आप तुम मेरी बात मानो, तुम्हारे कहने से मैंने बुरे से बुरे काम किए, अच्छे से अच्छे काम किए, योग यज्ञ व्रत अनुष्ठान इन्होंने सुनाया, सब कुछ किया, अब मेरे ना मेरे कहने से एक काम कर लो। बोले क्या? कि एक बार तुम कृष्ण कृष्ण इस नाम को डूब करके उच्चारण करो, इस नाम का उच्चारण करो, फिर तुम देखो कितना माधुर्य उत्पन्न होगा। तो महाप्रभु ने कहा इस आनंद की अनुभूति यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो श्रीमद रूप गोस्वामी के चरणापन्न हो जाओ, उनकी प्रेरणा से अभिभूत होकर के आविर्भूत होगा। अब महाराज तम तम तुंडे तांडव नीरति वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कडम्बनि घटयते कर्णादिभ्य प्रियाम चेत प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता कियद्भिर्मृते हि कृष्णे इति वर्णद्वयी। सभी इंद्रियों को जीतना नहीं पड़ता, जैसे किसी पर मोहित हुई स्त्री अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है, ऐसे जीव के आगे संपूर्ण इंद्रियां अपने को समर्पित करके भिक्षा के रूप में श्री कृष्णा आस्वादित कृष्ण रस बिंदु प्राप्त करने के लिए तुम्हारा अनुगमन करती हैं और तुम्हारी सेविका होकर के तुम्हारी अनुवर्तनी हो जाती है। इसलिए बंधुओं श्री रूप गोस्वामी पाद ने बड़े बड़े गहरे रस के सिद्धांतों को उज्ज्वल नीलमणि में, अलंकार कौस्तुभ में, विदग्ध माधव में, ललित माधव में और अनेक अन्य ग्रंथों में, पद्यावली में यावती निखले लोके नादा नामस्ति माधुरी तावती वंशिका नाद परिमाण निमज्जति, अखिल निखिल ब्रह्मांडों में जितना नाद ब्रह्म का आनंद व्याप्त है वो श्री कृष्ण की वंशी के एक छिद्र से निकले हुए एक छोटे से शब्द के माधुर्य की तुलना में नहीं आ सकता। श्री गोस्वामी बात पद्यावली में कहते हैं। और कितने कितने आचार्य गोविंद भक्त हैं, हमारे कृष्णदास कविराज हैं, सब बड़े बड़े महान भावों ने श्रीमद रूप गोस्वामी को ही आदर्श मान, सिद्धांत सनातन गोस्वामी का, दैन्य दास गोस्वामी का, और कवित्व रूप गोस्वामी का सिद्धांत और स्मृति का जो आलोड़न श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किया है, निष्पक्ष होकर भारत बहुत निष्पक्ष निर्वि अपवाद विवादों से बिल्कुल निवृत्तमान परम संत हैं। इनके ग्रंथों में इनका संतपना आभान्वित होता है, प्रकट होता है, इन्होंने कहीं पक्षपात नहीं किया है। इसलिए आज श्री मधुरूप गोस्वामी पाद के विषय में कुछ कहने के लिए तो अब तो कहने की तरंग आई है, लेकिन समय तो उत्तर दे रहा है, क्योंकि सब बोलना भी एक तरंग है। तरंग आ जाए तो घंटों चले, तरंग ना आए तो फूटों से एक शब्द भी ना निकले। तो श्री किशोरी जी का नूपुर झंकृत होकर के जब कंठ में इको करता है, मुखरित होता है, तब नूपुर ध्वनि का नाद ही जब निश्चित होकर के काव्य कलेवर में उद्भूत होता है, तो रसिकों के प्राण निमग्न होकर के कृष्ण प्रेम भक्ति के महामृत के सेवन के सत्पात्र बन जाते हैं। इन्हीं शब्दों के बाद मैं कुछ कहना चाहता था, कह नहीं पाया हूँ, लेकिन जो नहीं कहा जाता है वो मौन रह करके अपने आप प्रकट हो जाता है। गोस्वामी पाद के चरणों में सबसे प्रणाम करता महात्मा को प्रणाम करके मैं आपसे
मंच पर आसीन जो विद्वत जन है, वास्तव में समय के बंधन से बांधना भाव